धवला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 9।
ओम नमः सिद्धेय। ओम नमः सिद्धेय। ओम नमः सिद्धेय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्छायानं नमो लोए सवसाहूनं अन्तायमच्छहीनं दसद्दसयचावधीरं पडमजिनं वोच्छं नमिवूणन्तरम् अनंतरुत्तुंग सन्नमय दुग्गेजम।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम जो जीव स्थान है उसमें अपना विषय अंतरानुगम, और इसमें पृष्ठ संख्या 84 पर हम आगे 84 यह हम काय मार्गणा में त्रस कायिकों के बाद देख रहे थे। त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों में हमने संयता संयत तक की बात देखी थी, अब प्रमत्त संयत का देखेंगे। देखो त्रस कायिक और त्रस कायिक पर्याप्त प्रमत्त संयत का पहले तो बता दिए, चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान में कोई अंतर नहीं है नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है अभी। अभी उसमें उत्कृष्ट अंतर बताते हैं, जघन्य अंतर तो अंतर्मूर्त अन्य गुणस्थान को प्राप्त होकर वापस आने वाले, ये पहले चारों का एक साथ बता चुके थे, अब चारों का ही उत्कृष्ट अंतर अलग अलग पद्धति से बता रहे हैं। एकेंद्रिय स्थिति को प्राप्त कोई एक जीव, हर बार एकेंद्रिय स्थिति को प्राप्त उसमें उन्होंने अनंत काल या असंख्यात लोक प्रमाण काल एकेंद्रियों में बिताकर आने वाला जीव लिया है, मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भ को आदि ले 8 वर्ष के पश्चात उपशम सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ। 8 वर्ष के बाद अभी अंतर्मूर्त गिन रहे हैं, फिर प्रमत्त होकर नीचे गिरा और अंतर आरंभ किया, अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण परिभ्रमण करके त्रस में तो 2000 सागर प्लस वर्ष पृथक्व पूर्व कोटि पृथक्व, वर्ष पृथक्व नहीं पूर्व कोटि पृथक्व, और त्रस का एक पर्याप्त में 2000 सागर। अंतिम भव में सम्यक दृष्टि मनुष्य हुआ, यानी मनुष्य होकर सम्यक तो प्राप्त किया। पुनः दर्शन मोहनीय का क्षय करके इन्हें चौथे नीचे के गुणस्थानों में क्षय कर दिया, बाद में मुनि हो गए। अप्रमत्त संयत हो प्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पुनः अप्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिला है, यानी अभी उसको मोक्ष भेजेंगे। इस प्रकार 10 अंतर्मूर्त और 8 वर्षों से कम त्रस और त्रस पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति ही उन प्रमत्त चाहिए अप्रमत्त नहीं प्रमत्त संयत जीवों का उत्कृष्ट अंतर है। अब त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। स्थावर काय की स्थिति में विद्यमान कोई एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और गर्भ को आदि ले 8 वर्ष से उपशम सम्यक और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात अंतर को प्राप्त हो अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अंतिम भव में मनुष्य हुआ, सम्यक को प्राप्त कर पुनः दर्शन मुनि का क्षय कर संसार के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रह जाने पर विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर्लब्ध हो गया। तत्पश्चात प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी छह अंतर्मूर्त और मिलाए, यानी वो हजारों बार करता है वो अंतर्मूर्त में आ गया। बाद में फिर उसने क्षपणा के लिए अधप्रवृत्तकरण किया सातवें में, फिर अपूर्वकरण आदि छह अंतर्मूर्त और मिलाए। इस प्रकार आठ वर्ष और दस अंतर्मूर्तों से कम त्रस और त्रस पर्याप्तकों की उत्कृष्ट स्थिति ही उन अप्रमत्त संयत जीवों का उत्कृष्ट अंतर है।
कहते ये जो लास्ट में जो श्रेणी का जो अंतर्भूत कम किया, तो उसमें ऐसे नहीं हो सकता है कि प्रमत्त अप्रमत्त से तो मरण हो गया, तो
मरण कैसे होगा? त्रस की स्थिति अभी पूरी हो रही है और हमको अंतर घटित करना है। अंतर घटित करने का हमारा प्रयोजन है। मरण होने के लिए मिथ्यात्व में आकर और अंतर्मूर्त बिताना पड़ेगा, आयु कब बांधेगा? आयु कब बांधेगा? नहीं नहीं, आप आपकी जो पॉसिबिलिटी लेते हैं, देव कैसे आयु बांधेगा? एक इंद्रिय में भेजना
देव का नहीं,
एक इंद्रिय में भेजना है। तीरियंच आयु बांधे तो सातवें में नहीं जा सकता, इसलिए वो बाद में आयु बांधनी पड़ेगी। तो मिथ्या तो मैं आया, अंतर्मूर्त गया, फिर आयु बांधी, अंतर्मूर्त गया, फिर और अंतर्मूर्त के बाद मरा, नो बहुत सारा बढ़ जाता है और वो काल बड़ा है। ख्याल में इन बात पॉसिबिलिटी के लिए किसी जीव को हो सकता है, उसकी बात नहीं, इसलिए पहले क्षपण आदि पहले कराए उसके। ये हो गया। अब 146 नंबर। चतुर्णम वसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चो ओघम त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है नाना जीवन की अपेक्षा ओघ के समान? यह सूत्र सुगम है, यानी एक समय से लेकर
नाना जीवन के
वर्ष पुस्तक
एक समय से
एक युग की अपेक्षा आप बताएंगे, यानी नाना जीवन की अपेक्षा एक समय से लेकर वर्ष पुस्तक को। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न अंतोमोत्तम, चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। 86 पेज, क्योंकि हमने देखा था आठवें के लिए अंतर 9 10 11 10 9, ये आठवें का अंतर। नौवे के लिए अंतर 10 11 10, दसवें के अंतर केवल 11 में रखना। उपकसेन बे सागरों में सहस्राणी पूर्व कोड़ी पुधत्तेन भियाणी बे सागरों में सहस्राणी देसुनानी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमशः पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागरोपम तथा कुछ कम 2000 सागरोपम है। जिस प्रकार से पंचेन्द्रिय मार्गणा में चारों उपशामकों की अंतर प्ररूपणा प्ररूपित की है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सामस्य रूप से अविकल प्ररूपणा करनी चाहिए। मैंने वहाँ पंचेन्द्रिय में पहला भव लास्ट भव ऐसा लिया था और बाद में उसको उपशम श्रेणी चढ़ा के मोक्ष भेजा था, यहाँ त्रस की स्थिति में लेना, इतना ही फर्क होगा। चतुर्णम खवा अयोगी केवली ओगम, चारों क्षपक और अयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र भी सुगम है। यानी नाना जीवन की अपेक्षा एक समय से 6 महीने, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। सजोगी केवली ओगम, सयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र भी सुगम है। नाना जी उनकी अपेक्षा कितना अंतर होगा अश्विन भाई?
नहीं होगा,
अंतर नहीं है, क्यों? हमेशा उसमें जीव पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा
अंतर नहीं है,
वो भी अंतर नहीं है। तो ये त्रस पर्याप्त, त्रस कायिक और त्रस पर्याप्त उनकी बात हो गई। अब तस काय अपज्जतानं पंचिंद्रिय अपज्जत भंगो, त्रस काय की लब्धि अपर्याप्तकों का अंतर पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के अंतर के समान है। देखो यह मार्गणा का अंतर बताएंगे, अभी गुणस्थानों का अंतर नहीं, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। पेज नंबर 86, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, यानी त्रस में से वो स्थावर का एक क्षुद्र भव करके वापस त्रस में आएगा, ऐसा जीव लिया। उत्कर्ष से अनंत कालात्मक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, एक इंद्रिय में एक रहने का उत्कृष्ट काल लिया। इस प्रकार पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों से त्रसकायिक लब्धि अपर्याप्तकों के अंतर में कोई भेद नहीं है। अभी 87 पेज पर आ गए, 87। ये त्रस की मार्गणा पूरी हो गई। यह अंतर काय की अपेक्षा कहाँ है? ऊपर लिखा एदम कायम पड़ुच्च अंतरम गुणम पड़ुच्च उभय दो ही नहीं नथ्य अंतरम निरंतरम। यहाँ दो का एक सूत्र बना दिया, अन्यत्र ऐसे दो सूत्र बनाए थे। यह अंतर काय की अपेक्षा कहाँ है? जैसे वहां हमने देखा था एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि में इंद्रिय की अपेक्षा कहा था, तो यह मार्गणा काय की है, तो काय मार्गणा की अपेक्षा बात हुई। गुणम पड़ुच्च उभय दोवी नत्य अंतर पढ़ा हमने, यह अंतर काय की अपेक्षा कहाँ है? गुणस्थान की अपेक्षा दोनों ही प्रकार से अंतर नहीं है, निरंतर है। दोनों ही प्रकार से यानी जगन्य उत्कृष्ट कहो या नाना एक जीव की अपेक्षा को, एक ही बात है। इस प्रकार काय मार्गणा समाप्त हुई। अब योग मार्गणा यहां से प्रारंभ होती है। योग मार्गणा में भेद हमने देखे थे, मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी। मनोयोगी के भी सामान्य अलग भेद करेंगे तो पांच भेद होते हैं, मनोयोगी के पांच, वचन योगी के पांच, और काय योगी में हमने सात भेद देखे थे। वैसे तो अकेला काय योगी इन जनरल लेंगे और भी एक भेद एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो योग मार्गणा के पहले ऊपर पढ़ेंगे, जोगानुवादेन पंचमन जोगी पंचवची जोगी सु काय जोगी उरालिय काय जोगी सु मिच्छादिट्ठि असंजद सम्मादिट्ठि संजदा संजद पमत्त अपमत्त संजद सजोगी केवलिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। क्या क्या कहा देखिए, हिंदी में पढ़ेंगे ख्याल में आ जाएगा आपको। योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी और औदारिक काय योगी में मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और सहयोगी केवलियों का अंतर कितने काल होता है? तो कहते हैं नाना जीवों के और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। हमने ओग में क्या देखा था, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान हमेशा रहेगा, परंतु यहाँ एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, ऐसा क्यों कहा मनीषा बेन, आप बताना। अरे परंतु अंतर एक जीव की अपेक्षा अंतर ने क्यों कहा? क्योंकि हमने क्या देखा था, पंचेंद्रिय मार्गणा देखी थी, तब चौथे गुणस्थान का अंतर वो अन्य गुणस्थान में चला जाए और वापस आए, वो अंतर देखा था। तो यहाँ अंतर ने ऐसा क्यों कहा? काय मार्गणा ने, अभी योग मार्गणा। हाँ,
एक जीव की अपेक्षा योग का काल
अंतर नहीं क्यों कहा? यानी वही देखो देखो वही योग रहते हुए अन्य गुण स्थान को जाकर वापस आना इतना बड़ा काल नहीं योग का, योग का काल बहुत छोटा है।
क्यों
कैसे निकाल नहीं होगा, पलटता रहता है मनो से वचन, वचन से काय योग। तो देखो कोई काय योगी है और सम्यक से चौथे से पहले में आया, तो पहले में आने के बाद वो अंतर्मूर्त में वापस सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, परंतु उस एक अंतर्मूर्त में उसके योग अनेक बार पलटेंगे, वही योग कायम नहीं रहेगा। तीनों योगों के लिए अलग अलग सोचना, मनोयोगी के मनोयोग में से नीचे आएगा और वापस मनोयोग के रहते हुए उपज जाए तो अंतर घटित हो सकता है, वो मनोयोग से आएगा तो वचन योग का योग उसके हो जाएंगे, वो अंतर मुहूर्त में उसके योग का पलटना बहुत बार होगा। हमने तो देखा था श्रेणी के गुणस्थान इतने छोटे काल के है, वहां पर भी एक योग कायम नहीं रहता है किसी एक गुणस्थान में, वहां भी योग पलटते रहते हैं। आप उसमें 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 बोलना,
यहाँ पर अपनी अपेक्षा क्या है, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी और काय योगी, यानी ये एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि वचन योग से काय योग में गया, काय योग से
ऐसा नहीं लेना, ऐसा लगाना पांच वचन योग मनोयोगी का ना, उसमें सामान्य मनोयोगी में ये सब लगा लो, फिर सत्य मनोयोगी में ये सब लगा लो, असत्य मनोयोगी में सब लगा लो, ऐसे एक एक भेद पर ये बात लगा लो, ये सबको कॉमन ऐसा नहीं इकट्ठा नहीं लेना, उसमें से एक एक का सेपरेट लेना, हर एक के बारे में यही कथन होगा। अकेला कायोग कहो तो भी यही कथन, औदारिक कायोग कहो तो भी यही कथन। अभी मिला क्या आपको? हाँ तो उसमें उसमें कुछ बात खास है, पहले भाग कौन से भाग में, पहले भाग में
क्या बताया अरविंद भाई को,
जयधवला के पहले भाग में ये सभी कालों के अल्पभूत हमने देखे थे, 63 अल्पभूत देखे। हाँ यानी वो काल कितना छोटा है योग का, ये बात बताना चाहते, अन्यत्र हमने क्या देखा था, गुणस्थान में जाकर वापस लौट के आता है वो क्षुद्र भाव से भी छोटा काल था, मिथ्यात्व में जाकर वापस सम्यक तो प्राप्त करने का काल क्षुद्र भाव से भी छोटा था, और उससे भी छोटा काल योगों का है क्योंकि उसमें भी एक योग कायम नहीं रहता है, उसमें योग अनेक बार पलटना होता है। और ये जो बात है वो हरेक के लिए योग के लिए सेपरेट सेपरेट लगाना, सबको मिलकर कथन नहीं है, ख्याल में है ना बात, सबके मिलकर एक साथ नहीं लेना, हर एक योग का अलग अलग कथन लेना। क्योंकि सूत्रोक्त तो विवक्षित योगों से, विवक्षित योग लिखे ना सहित विवक्षित गुणस्थान सर्वकाल संभव है। शंकाकार पूछ रहे देखो, एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव कैसे कहा, क्योंकि हमने तो ओग में भी देखा था, पंचेंद्रियों में भी देखा था, त्रसों में भी देखा था, चारों गतियों में भी देखा, फिर अंतर तो होता है और यहाँ तो ना पा रहे। समाधान, सूत्रोक्त गुण स्थानों में यानी ये पहला है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां और तेरवा, इन गुण स्थानों में न तो अन्य योग में गमन द्वारा अंतर संभव है, क्योंकि ऐसा मानने पर विवक्षित मार्गणा के विनाश की आपत्ति आती है, यानी उसी योग में रहते हुए जाके वापस आना ये संभव नहीं है क्योंकि वो योग पलटता है, विवक्षित मार्गणा का विनाश यानी वो योग पलट जाता है, और न अन्य गुणस्थान में जाने से भी अंतर संभव है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान को गए हुए जीव के अन्य योग को प्राप्त हुए बिना पुनः आगमन का अभाव है। पहले वाक्य का अर्थ ऐसा है कि काय योगी था और वो मनोयोग होकर अन्य गुणस्थान में गया, तो भी वो अंतर नहीं घटित होगा, क्योंकि पहले हमने ऐसा उसमें देखा था अंतर की बात, एक समय वाली वगैरह, तो मरण वगैरह की अपेक्षा वो, परंतु वहाँ अपेक्षा जुदी थी, यहाँ बात अलग है। यहाँ हमें योग मार्गना है तो वो कांस्टेंट रखना है। वो पहले हमने देखा था ना, गुण स्थान परिवर्तन, रेशा परिवर्तन वगैरह वगैरह, वो बात यहाँ नहीं लागू होती। यानी यहाँ पहले ही बात कह के दो बातें बताई, फिर प्रत्यु समाधान सूत्रोक्त गुणस्थानों में, जो ऊपर बताए वो गुणस्थानों में, न तो अन्य योग में गमन द्वारा अंतर संभव है। यानी चौथे गुणस्थान वाला है, काय योगी था और वो मनोयोग में जाकर फिर मिथ्यात्व में गया, तो कहते वो भी संभव नहीं, क्योंकि हमको काय योग में ही कायम रखना है। काय योग से मनोयोग में भेज देंगे तो मार्गणा का अभाव हुआ, एक बात। और दूसरी बात क्या, कि अन्य गुणस्थान में जाने से भी अंतर संभव नहीं है। क्यों? दूसरे गुणस्थान को गए हुए जीव को, यानी काय योग के रहते हुए मिथ्यात्व में गया, योग कायम रखा, फिर भी अन्य योग को प्राप्त हुए बिना पुनः आगम का अभाव है। यानी वो नियम से अन्य योग को जाएगा, क्योंकि वो योग का काल इतना लंबा नहीं है कि वो पूरा वहाँ मिथ्यात्व में इतने लंबे काल तक रहे, वापस उसी काय योग के साथ वापस आ जाए। ये दोनों ही कारण बताए। इसलिए सूत्र में बताए गए जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं होता। अब 88 पेज पर, शासन सम्मा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। उक्त योग वाले सासाधन सम्य दृष्टि और सम्य मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? अभी नाना जीव लिए, नाना जीव ने कोई ना कोई उस योग वाले योग के साथ उसमें आता रहा, उसमें वो अंतर्मूर्त की बात नहीं लगानी है, क्योंकि भले एक जीव का अंतर्मूर्त पूरा होगा, अपन अन्य जीव उस योग के साथ उसमें आ सकता है। तो नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। उपक से न पलिदो वमस असंख्य यदि भागो, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि ये दोनों ही राशियां सांतर है। यानी जैसे ओग में देखा था वैसे यहाँ पर केवल उसमें विवक्षित योग के साथ आने वालों की कंडीशन लगाए, फिर भी वो भी पॉसिबल है। शंका, राशियों के सांतर रहने पर भी अधिक अंतर क्यों नहीं होता है? तो कहते ये सांतर राशि है तो इतना ही अंतर क्यों बताया, ज्यादा क्यों नहीं होता? समाधान, स्वभाव से ही अधिक अंतर नहीं होता, यानी इससे अधिक अंतर पाया ही नहीं जाता कभी, ऐसा ही स्वभाव है, वस्तु स्वभाव। अब कहते एक जीवम पड़ुच्च नत्य अंतरम निरंतरम। अभी हमारी कंडीशन क्या है योग वाली, ओग में क्या देखा था सासाधन का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्ले का असंख्या था। अभी यह अंतर्मूर्त भी नहीं हो सकता उसी योग के साथ, तो इतना काल तो हो ही नहीं सकता एक जीव की अपेक्षा। तो कहते उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं, निरंतर है, क्योंकि अन्य गुणस्थानों और अन्य योगों में गमन द्वारा उनका अंतर असंभव है। ये तो आसान है ना, वहां तो अंतर्मूर्त भी नहीं घटित होगा, यहाँ तो इतना लंबा काल घटित नहीं ही होगा। अब चदुन्नम उवसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चो उगम। उक्त योग वाले चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है नाना जीवों की अपेक्षा? ये प्रश्न चिन्ह चाहिए, कितने काल तक होता है नाना जीवन की अपेक्षा? ओह के समान अंतर है, क्योंकि जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से वर्ष पृथक्व अंतर है। इस प्रकार ओह के अंतर से इनके अंतर में कोई भेद नहीं है, वो कथन वही होगा वर्ष पृथक्व। एक जीवन पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। हमने ओग में क्या देखा था एक जीव की अपेक्षा कितना अंतर होता है, तो अंतर्मूर्त का, जैसे आठवें वाला 9-10-11, 10-9 करके वापस आया, परंतु उसमें योगों का पलटना कितने बार होगा, इसलिए अंतर नहीं कहेंगे। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अन्य योग और अन्य गुण स्थानों में गमन द्वारा उनका अंतर असंभव है। शंकाकार, एक योग के परिणमन काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा है, यह कैसे जाना जाता है? यानी यहाँ उसमें उन्होंने स्टेटमेंट ही कर दिया कि गुणस्थान का काल उससे संख्यात गुणा है, यानी उसमें कितने बार पलटना होगा योगों का। समाधान, एक जीव के अंतर का अभाव बताने वाले सूत्र से जाना जाता है कि एक योग के परिवर्तन काल से गुणस्थान का काल संख्यात गुणा है। योग का परिवर्तन काल है, वही योग रहने का काल जो है फिर वो पलटेगा नियम से, उसको कहते हैं। चतुर्णम खवानम ओघम, उक्त योग वाले चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास अंतर है तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, इस प्रकार ओघ से अंतर में कोई भेद नहीं है। भले यहाँ योग की मार्गणा अपेक्षा लगाई, फिर भी अंतर नहीं होगा उसका। अब ये तो हमने 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, सामान्य से काय योगी और औदारिक काय योगी, इनके बारे में ये बातें देखी। अब अन्य जो रह गई हैं काय योग, उनकी बात करेंगे। ओरालिय मिश्र काय योगी सु, ब्रह्मा आपको सोचना है औदारिक मिश्र काय योग में गुणस्थान कौन कौन से पाए जाएंगे। पहला, दूसरा, चौथा और कोई, लक्ष्मी,
तेरवा।
अब ओरालिय मिश्र काय योगी सु, मिच्छा दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना एक जीवम पड़ुच्चन अत्य अंतरम निरंतरम। औदारिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? देखो, नाना जीव तो हमेशा ही हो जाएगी उसमें, लब्धि अपर्याप्त भी हमेशा होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्त वाले भी अनंत जीव उसमें हो गए, एक इंद्रिय पर्याप्त होने वाले, तो नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं क्यों कहा?
गुणस्थान का पलटता नहीं, गुणस्थान पलटता नहीं है, औदारिक मिश्र का योग
उसको, उसमें गुणस्थान नहीं पलटता, यानी मिथ्या दृष्टि का तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा कार्य। क्योंकि औदारिक मिश्र का योगियों में योग और गुणस्थान के परिवर्तन का अभाव है। अब औदारिक मिश्र का योग का काल कहाँ तक है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक का, वो निवृत्ति अपर्याप्त में, लब्धि अपर्याप्तों की पूरी आयु ही औदारिक मिश्र का योग वाली होती है, तो उसमें योग औदारिक मिश्र कहने से उसका योग तो पलटेगा ही नहीं, योग पलटेगा तो मार्गणा ही बदल जाएगी, वो औदारिक का योगी वाला हो जाएगा। तो औदारिक इतने काल में गुणस्थान परिवर्तन का अभाव है, ऐसा कोई होता है कोई गुणस्थान से कन्या अन्य गुणस्थान में चला जाए? सासाधन से मिथ्या तो हो जाता है, परंतु उसमें वापस सासाधन में आने का सवाल नहीं है, यानी अंतर घटित नहीं होगा किसी का, समझ में आई बात? शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले औदारिक मिश्र के काल में जो सासाधन के साथ यहाँ आया है मनुष्य तीर्यंचों में, वो तो औदारिक मिश्र के काल में ही सासाधन से मिथ्यात्व में आता है, बाद तक नहीं रहता उसका सासाधन, इतना लंबा काल नहीं उसका। जा सकता है, अभी उसने पहले भाव में कितना काल, उसका सासाधन का कितना काल था, इस पर वो निर्भर है, यानी उससे अधिक तो नहीं रहेगा, ये कहना चाहते। भले 6 अवली वाला है और पहले समय एक समय बाद मरकर देव भी होता है, तो भी वो वैकृत मिश्र के काल में ही उसका मिथ्यात्व में आना हो जाएगा, यानी 6 अवली से भी वो काल बड़ा है। शासन सम्मादिच्छिन्नम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना जीवम पड़ुच्चो ओघम औदारिक मिश्र का योगी शासादन सम्य दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। ओघ के समान यानी औदारिक मिश्र में कोई जीव आया शासादन के साथ मरकर वो मनुष्य तिरेंच में आया, कोई एक या अनेक जीव एक समय के लिए कोई नहीं आया फिर और अन्य समय में आ गए तो एक समय का अंतर पड़ा, और लंबे काल तक कोई नहीं आया तो पल्ले का संख्या होगा। देखो क्योंकि जगन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्लोपम का असंख्यात भाग अंतर है, इस प्रकार ओघ से कोई भेद नहीं है। यानी इतने काल में कोई ना कोई मरकर आने वाले ही जीव लिए, मनुष्य तिरेंचों में इनके शासन के साथ आने वाले जीव लिए। वो कहां से आएगी अश्विन भाई? मेरा प्रश्न है औदारिक मिश्र में शासन के साथ आने वाले जीव कौन से गति से आएंगे?
देव गति से नरक से भी आएंगे और मनुष्य तिरियन से भी आएंगे।
चारों गति से आ सकते हैं, चारों गति से मनुष्य तिरियन में उत्पन्न हो सकते हैं। एक जीवम पड़ुच्च नस्थि अंतरम निरंतरम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है। वहाँ 162 नंबर डालो, 165 नंबर हुआ है, 165 हुआ है, 162 करो हिंदी में। देखो उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, क्योंकि औदारिक मिश्र कायोग की अवस्था में अन्य योग में गमन का अभाव है तथा अन्य गुणस्थान को गए हुए भी जीव के लौटकर शासादन गुणस्थान के साथ उसी योग में परिणमन का अभाव है, क्योंकि दो शासादन के बीच में तो पल्ले का असंख्या तो भाग जघन्य अंतर है। अभी औदारिक मिश्र का काल कितना छोटा है, शासादन से मिथ्यात्व में जा तो सकता है, अंतर घटित करने के लिए वापस उसको शासादन में लाना है, वो बात घटित नहीं होगी। अब असंजत सम्मादिच्छिन्नम अंतरम केवचिरम कालादोहो दिए नाना जीवम पड़ुच्च जघन्येन एक समयम। औदारिक मिश्र योगी असंयत समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? मनीषा बेन आपको सोचना है, भले आपको नहीं मालूम होगा फिर भी आपको सोचना है, औदारिक मिश्र का योग किसके होता है? तो मनुष्य तिरेंचों के होता है, विग्रह गति के बाद वहां जन्मने वाले जीवों को शरीर पर्याप्ति के पहले होता है या लब्धि अपर्याप्तकों के होता है। अब यहाँ चौथा गुणस्थान है तो लब्धि अपर्याप्त आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी सम्यक्त्व के साथ मनुष्य और तिरियंच में जन्मने वाले जीव है ये बात ख्याल में आई? पर अभी उसके बारे में यहाँ बताएंगे कि सम्यक्त्व के साथ जन्मते हैं तो नाना जीव कोई जीव जन्मे मनुष्यों में, देव से आए नरक से आए या वो भोग भूमि वाला क्षायिक भी ले सकते उसमें औदारिक मिश्र तो उसको भी होगा ना, तो सम्यक्त्व के साथ कोई जीव जन्मे। देखो अभी हम इसका अंतर देखेंगे, यहाँ पर औदारिक मिश्र का योगी असंयत समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यानी एक समय के लिए कितने जीव आ गए मनुष्य में, एक समय के लिए कोई नहीं आया, मनुष्य कहो या तिरंच, तिरंच में लेना है तो भोग भूमि वाला लेना, क्योंकि जगन्य से अंतर बता रहे, क्योंकि देव नारकी और मनुष्य असंयत समय दृष्टियों का मनुष्यों में उत्पत्ति के बिना तथा मनुष्य असंयत समय दृष्टियों का तिरियंचों में उत्पत्ति के बिना असंयत समय दृष्टियों से रहित औदारिक मिश्र का योग का एक समय प्रमाण काल संभव है। क्या कहते हैं ये असंयत समय दृष्टि? यहाँ ये बताना चाहते हैं कि औदारिक मिश्र में असंयत समय दृष्टि कैसे हो सकते हैं, तो कहते हैं देव समय दृष्टि उत्पन्न हो गए तो, नारकी समय दृष्टि मनुष्य में आएंगे तो, या मनुष्य समय दृष्टि बहुभूमिक साइक समय दृष्टि मनुष्य होगा तो, ये मनुष्यों में उत्पन्न की बात बताई। अब तिर्यंच में समय दृष्टि के साथ कौन आता है? तो कर्मभूमि का मनुष्य क्षायिक होकर तिर्यंच भोगभूमि वाला समयत्व के साथ जन्म ले सकता है। ऐसे दो अलग अलग बातें बताई। इसके बिना और कोई औदारिक मिश्र में चौथे गुणस्थान के साथ नहीं आ सकता, ये यहाँ कहना चाहते। उनकी वाक्य रचना थोड़ी अटपटी है। ये लिया ना दूसरी लाइन में, मनुष्य असंयत समय दृष्टियों का तिर्यंचों में उत्पत्ति के बिना, ये भोगभूमि का ही है और क्षायिक ही होना चाहिए। हाँ आप समझने के लिए वहां लिखो ना, मनुष्य असंयत यानी वो क्षायिक के साथ भोगभूमि, इसलिए मनुष्य से तिर्यंच लिया। और ऊपर देव नार की तो समय दृष्टि वेद समय दृष्टि को यक्षायिक है तो मनुष्य में आए, और मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न करना है वो भी भोगभूमि का लेना। ख्याल में आई बात? यहाँ कैसे कैसे आते हैं औदारिक मिश्र में समय दृष्टि कैसे हो गए? देव समय दृष्टि आएंगे तो, नार की समय दृष्टि आएंगे तो, या मनुष्य क्षायिक करके मनुष्य में जाएगा भोगभूमि में तो, दूसरी लाइन में क्या बताया? मनुष्य असंय दृष्टि असंय समय दृष्टि तिर्यंचों में, यानी वो शायिक करके भोगभूमि का तिर्यंच होगा तब।
शायिक से तो कृतकृत्य वेदक भी ले सकते हैं ना? नहीं, कृतकृत्य वेदक नहीं ले सकते, मनुष्य से मनुष्य में कृतकृत्य
क्षायिक को या कृतकृत्य वेदक को, एक ही बात है, गुणस्थान तो चौथा ही उनका, उसमें हमें समय को में भेद नहीं डालना है कौन सा है वो, कौन सा जीव लेना है उसकी बात चल रही है। तो उसमें एक समय का अंतर पड़ सकता है, एक बात हो गई। अब देखते आगे, उक्कसे न वास उदत्तम औदारिक मिश्र का योगी, औदारिक हुआ है, औदारिक करो, औदारिक करना, औदारिक मिश्र का योगी असंयत समय दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतरवर्ष पृथक्त्व प्रमाण है, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्यों में वर्ष पृथक्त्व प्रमाण काल तक असंयत समय दृष्टियों का उत्पाद नहीं होता है। अधिक से अधिक लंबा अंतर जाएगा तो ऐसा स्वभाव ही है, इसीलिए हर एक के लिए अंतर के लिए यही कारण है, यानी इतने काल के बाद कोई ना कोई तो उसमें उत्पन्न होगा ही होगा। देखो यहाँ ये बात समझनी है, अभी यहाँ भरत भूमि में तो ऐसे समयत्व के साथ तो चौथे काल में उत्पन्न हो गया, या पहले दूसरे तीसरे काल में भी क्षायिक के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, तो यहाँ पंचम काल में कोई समयत्व के साथ उत्पन्न नहीं होगा, पर जहाँ विदेह क्षेत्र है वहां तो हमेशा ही वो चौथे काल सदृश परिस्थिति हमेशा ही उत्पन्न होगा। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम औदारिक मिश्र का योगी असंयत समय दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि इसमें वो सम्यक्त्व के साथ आया है, अभी इस काल में वो मिथ्यात्व में जाए ये पॉसिबल नहीं, और मिथ्यात्व में जाकर वापस सम्यक्त्व प्राप्त करे ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि औदारिक मिश्र का योगी असंयत समय दृष्टि जीव में उक्त गुणस्थान और औदारिक मिश्र का योग के परिवर्तन का अभाव है। जैसे सासादन में मिथ्यात्व में आ सकता है, आता भी है, वैसा
यहाँ पे नहीं।
कोई चौथे के साथ आया है तो वो तीसरे में जावे, पहले में जाए, यहाँ संभव नहीं है। उसका गुणस्थान चौथा ही रहेगा। अब सजोगी केवलिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दिए नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम। औदारिक मिश्र कायोगी सयोग केवली जिनों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। देखो ये कैसे होगा, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। सयोगी केवली में औदारिक मिश्र कब होता है बोलो अश्विन भाई?
कपाट,
कपाट समुद्रात में, वो दंड कपाट प्रतर और लोकपुरण वाले ना, तो कपाट में तो कोई एक या अनेक ही उसमें आ गए और फिर दूसरे समय में कोई नहीं आया, तो एक समय का अंतर हो सकता है। हाँ, कोई भी उतर नहीं चढ़ने वाला। तो नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, क्योंकि कपाट पर्याय से रहित केवली जिनों का एक समय अंतर पाया जाता है। यानी हर बार कोई ना कोई करने वाले ऐसे थोड़ी होंगे, बीच में कोई नहीं भी करने वाले होंगे, केवली समुदात नहीं करने वाले भी। तो उकस्य न वासपुदत्तम, औदारिक मिश्र का योगी केवली जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है। यानी वर्ष पृथक्व में कोई ना कोई तो सहयोग केवली समुदात करेंगे ही करेंगे। क्योंकि कपाट पर्याय के बिना केवली जिनों का वर्ष पृथक्व तक रहना संभव है। देखो हमने क्या देखा था, चौदहवें गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा कितना देखा था का अंतर?
छह मास।
जैसे जो क्षपक श्रेणी का है वही चौदहवें वाले का, यानी छह मास में कोई ना कोई तेरहवें से चौदहवें में जाएगा ही जाएगा। पर ये जरूरी नहीं कि उनको समुद्घात करना पड़े। तो समुद्घात बिना अगर जाते रहे तो वर्ष पृथक्व प्रमाण जाएंगे, फिर पश्चात कोई ना कोई करेगा ही करेगा, ये उसका अर्थ होता है। हाँ, अभी वर्ष पृथक्व इतना उन्होंने रखा है, वैसे वैसे ही समझना, तीन से आठ उसको समझ सकते हैं, यानी कुछ वर्षों में, ऐसा उसका अर्थ है। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, औदारिक मिश्र का योगी केवली जिनों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं निरंतर है। तो मेरा प्रश्न है, वो कपाट किया फिर तीन समय के बाद लौट कर आते हैं ना कपाट में, तो उसको क्यों नहीं लिया तीन समय का अंतर? कब? नहीं, वैसा होता तो तीन समय का अंतर कहते। मेरे प्रश्न है उसका उत्तर है, क्योंकि औदारिक मिश्र एक समय के लिए
कारमान का योग,
औदारिक मिश्र से वो कारमान का योग होता है, मार्गना पलट जाता है। भले वो उसमें तीन समय का अंतर है उसके ना नहीं है, परंतु वहाँ तो
मार्गना पलट जाएगा,
मार्गना बदल गई ना उसका, योग बदल गया। होता है फिर औदारिक मिश्र होकर फिर औदारिक होता है, परंतु वो देखो मार्गना पलट गई, उसी मार्गना को रखते हुए हमको उस गुणस्थान में वापस आना है, वो बात हो नहीं सकती। इसलिए औदारिक मिश्र का योगी केवली जिन्हों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि अन्य योग को नहीं प्राप्त होकर औदारिक मिश्र का योग में ही स्थित केवली के अंतर का होना असंभव है, क्योंकि वो तो कर्मण का योग को प्राप्त होता है।
तेरहवें गुण स्थान में जो जीव जाता है उसके अगाती कर्मों की मिनिमम स्थिति और मैक्सिमम स्थिति कितनी अंतर कोड़ा कोड़ी होगी ना, और मिनिमम नहीं मिनिमम तो अंतर्मूर्त प्रमाण
पल्ले का संख्या तो होगा और वहाँ स्थिति कांडक होते हैं इसमें।
स्थिति कांडक तो कंटिन्यूस होते हैं, सो मैक्सिमम पल्ले का संख्या तो होगा बेटा,
उसमें भी पल्ले के असंख्या पे भाग प्रमाण इतने इतने कांडक होते हैं। वैसे ऑर्डिनरी भी कांडक तो होते रहते थे, परंतु यहाँ एक समय में एक कांडक होता है। ऑर्डिनरीली अंतर्मूर्त में एक कांडक होता है, यहाँ एक समय में एक कांडक होता है। हाँ, अब ये तो हो गया अपना। अब वैक्रिय कायु की बात करेंगे। वेयुवीय काय योगी सु चतुष्ठाणीनम मनोजोगी भंगो। अभी वैक्रिय कायुगियों के गुणस्थान कौन से है? तीसरा देव और नारकियों में होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा
में नहीं होता,
मिश्र में नहीं होगा। मिश्र के गुणस्थान शासाधन होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा। तो देखो वैक्रिय कायोगियों में आदि के चार गुणस्थान वर्ती जीवों का अंतर मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों के समान क्यों कहा? जैसे हमने देखा वो चौथे गुणस्थान का को या पहले गुणस्थान का अंतर नहीं होगा, क्योंकि अन्य गुणस्थान में जाकर आने तक योग कितनी बार पलटेगा, उसी योग में रहते हुए वो संभव नहीं है। और मनोयोगियों के समान पहला और चौथा गुणस्थान नाना जीवन की अपेक्षा निरंतर होगा, और दूसरे तीसरे के लिए एक समय से पल्ले का असंख्या का अभाव उतना अंतर होगा। अब वेयुवीय मिश्र काय जोगीसु मिच्छा दिठिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दिए नाना जीवन पड़ुच्च जहने न एक समय। अभी वैक्रिक मिश्र में मिथ्या तो गुणस्थान का वैक्रिक मिश्र कब होता है? मनुष्य तीर इंच मरकर वहां देव में उत्पन्न हो गए, तब कोई एक जीव उत्पन्न हो गया, अनेक जीव उत्पन्न हुए, एक समय तक कोई नहीं उत्पन्न हुआ, फिर उत्पन्न हुए, यानी वो मिथ्यात्व के साथ जाने वालों की बात चल रही। तो वैक्रिक मिश्र काय योगियों में मिथ्या दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय अंतर है। जैसे सभी वैक्रिक मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव वैक्रिक काय योग को प्राप्त हुए, इस प्रकार एक समय वैक्रिक मिश्र काय योग मिथ्या दृष्टि जीवों से रहित दिखाई दिया। द्वितीय समय में सात आठ जीव वैक्रिक यानी कुछ जीव वैक्रिक मिश्र काय योग में दृष्टिगोचर हुए, इस प्रकार एक समय अंतर उपलब्ध हुआ। अब नाना जीवन की अपेक्षा बात करेंगे। उक्कस से न 1200 महोत्तम वैक्रिक मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 12 महोत्तम है। देखो वैक्रिक मिश्र यानी देव में भी उत्पन्न हो सकता है, नरक में भी उत्पन्न हो सकता है। हमने देखा था देव में कोई नहीं उत्पन्न हुआ लंबे काल तक तो 24 महोत्तम, अकेले नरक में कोई नहीं गया तो 24 महोत्तम, और वैक्रिक मिश्र की अपेक्षा 12 महोत्तम होता है, दोनों को लेना ना, तो 12 मुहूर्त के अंतर से वैक्रिक मिश्र में कोई ना कोई जीव जाएगा ही जाएगा, मैक्सिमम अंतर इतना है। देखो वैक्रिक मिश्र का आयु मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 12 मुहूर्त है। जैसे सभी वैक्रिक मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टि जीवों के वैकृत कायोग को प्राप्त हो जाने पर 12 मूर्त प्रमाण अंतर होकर पुनः 7-8 जीवों के वैकृत मिश्र कायोग को प्राप्त होने पर 12 मूर्त प्रमाण अंतर होता है। हमने काल में कैसे देखा था, अंतर मूर्त तो रहेंगे ना, एक साथ आए हुए एक साथ, या नाना जीवन की अपेक्षा पल्ले का असंख्या तो भाव तक चलता रहे। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, 172 नंबर देना इसको प्राकृत में। वैकृत मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। ऐसा क्यों कहा, ब्रह्मा सोच सकती है, यानी वैकृत मिश्र में
योग,
योग तो वही रहता है एक बात, और उसी योग को रहते हुए अन्य गुणस्थान को जाए वापस आए ये भी संभव नहीं है। क्योंकि उन वैकृत मिश्र कायोगी मिथ्या दृष्टियों के अन्य योग और अन्य गुणस्थान में गमन का अभाव है। कहते शासन सम्मादिट्ठि असंजत सम्मादिट्ठिनम ओरालिय मिश्रभंगो, वैकृत मिश्र कायोगी सासाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर औदारिक मिश्र कायोगियों के समान है। क्योंकि सासाधन समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः, यानी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लवों का असंख्यात्वा भाग, इनसे एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। देखो ये सासाधन का कैसा लेना, सासाधन के साथ कहाँ उत्पन्न करना उसको,
देव में,
देव नरक में कोई नहीं जाता, देव में। और एक जीव जो सासाधन लेकर जाता है उदरिक मिश्र में, उसका तो अंतर का सवाल नहीं है, वो सासाधन से तो नित्यात्म ही चला जाता है। इससे असंयत सम्य दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा, देखो उन्होंने सासाधन की और औदारिक मिश्र के समान बताया ना, उससे क्या अंतर है वो बताते थे। हमने यहाँ देखा था 90 पेज पर, चौथे गुण स्थान के लिए उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक पर बताया था। अब यहाँ असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य एक समय और उत्कृष्ट मास पृथक्त्व अंतर होने से,
वर्ष पृथक्त्व
तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से इन वैकृत मिश्र कायोगी सासाधन और असंयत समय दृष्टियों के अंतर में कोई भेद नहीं है।
ये औदारिक मिश्र में असंयत का तो वर्ष पृथक को लिया था, यहाँ पे तो मास पृथक को लेना है।
इनसे का अर्थ क्या है, वहाँ मास पृथक्व लिखा है और वहाँ वर्ष पृथक्व लिखा है।
हाँ, दोनों का समान बता रहे। नहीं, यहाँ पे औदारिक मिश्र के समान बताया ना अरविंद भाई। अच्छा, इसीलिए आपको
क्या क्या एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव है।
नाना जीव की अपेक्षा फर्क है ना,
यानी केवल वो उत्कृष्ट मास पृथक पर इतना ही डिफरेंस है,
फर्क है।
बाकी नाना जीव की अपेक्षा तो
औदारिक
एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव दोनों में है। ठीक है, यानी किस अपेक्षा से दोनों में कथन सेम है वो बता दिया। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, ये बात दोनों में घटित हो रही है। समझ में आई बात? देखो, दूसरे गुणस्थान में तो वही बात है, एक समय से पल्ले का संख्या तो नाना जीवन की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं होता, वो एकरेक मिश्र वाला साक्षाधन में आने वाला लौट कर आने का सवाल नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला भी वैकरिक मिश्र में आने वाला चौथे में ही रहता है, उसका भी अंतर नहीं होता, इतनी तो समानता है। केवल औदारिक मिश्र में वर्ष पृथक्त्व का अंतर है नाना जीवन की अपेक्षा, और यह मास पृथक्त्व का अंतर है। क्योंकि वह मेजोरिटी मनुष्य में आने वाले जीव है, और यहाँ तो सीरियंस सारे जाने वाले है ना देव में, समय को लेकर उनकी बहुलता होगी ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, 93 पेज। आहार काय जोगी सु, आहार मिश्र काय जोगी सु। अब ये गुणस्थान इसमें प्रमत्त संयत है। प्रमत्त संजदानम अंतरम के वचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समयम। आहारक का योग्य और आहारक मिश्र का योग्यों में प्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यानी किसी न किसी मुनिराज ने आहारक शरीर बनाया
एक समय अंतर,
एक या अधिक जीवों में, एक समय तक किसी ने नहीं बनाया हुआ था, वो किसी वो काय युग में नहीं था, मिश्र में या आहारक का युग में, और फिर कोई उसमें आ गया, ऐसा जीव लेना तो एक समय का अंतर होगा। यह सूत्र सुगम है। उपकसे न वास पुधत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। यह सूत्र भी सुगम है, यानी कुछ वर्षों में तो कोई ना कोई तो आहारक शरीर बनाएंगे ही बनाएंगे। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगियों में प्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि उसमें एक चौथे छठा गुणस्थान छोड़कर अन्य गुणस्थान ही नहीं है, तो सवाल होता ही नहीं उस छठे का अंतर पड़ने का, क्योंकि आहारक का योग या आहारक मिश्र का योग में अन्य योग या अन्य गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है। समझ में आई ना बात? यानी वो आहारक शरीर के होते हुए जीव के आहार का योग होता है, मनोयोग होता है, वचन योग होता है, फिर होता है, पर हमारा वो योग कायम रखना है और गुणस्थान भी वही तो होगा, उसमें ना अन्य गुणस्थान में पलटना होगा। जब आहारक का योग है तो अन्य योग भी नहीं है, ये कहना चाहते। कम्मय काय योगी सु, मिच्छा दिठी शासन सम्मादिठी असंजत सम्मादिठी सजोगी केवलीनम ओरालिय मिस्स भंगो। कार्मण काय योगियों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि और सयोगी केवलियों का अंतर औदारिक मिश्र काय योगियों के समान है। हम स्वयं सोचते हैं कारमान का योग में मिथ्या दृष्टि जीव कब कब हो गए। विग्रह गति में कारमान का योग होगा वहाँ तो कारमान का योग में रहने वाले कितने जीव हो गए? अनंत हो गए ना, और हमेशा ही रहेगा नाना जीवों की अपेक्षा, हमेशा ही कारमान का योग पाया जाएगा, तो मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर नहीं होगा। एक बार एक जीव की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ सकता है क्या? वो तीन समय मैक्सिमम किसी को वो भी नहीं हो सकता है। मिथ्या दृष्टि आउट ऑफ क्वेश्चन। अब सासाधन का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कितना होगा?
एक समय के पन्ने का अंतर।
हाँ, कैसे? हाँ, जगन एक समय उत्कृष्ट पल्ले का संज्ञा जो ओग में होता है वही होगा। हाँ, अब चौथे गुणस्थान वाले का कारमान का योग में कारमान
होगा ही नहीं,
एक समय है ना, पर अभी यहाँ क्या है, चारों गति वाले समय दृष्टि ले सकते हैं। वहाँ वैकरिक मिश्र या औदारिक मिश्र ऐसा लिया था, अभी
ऐसा
अभी सम्यक के साथ आने वाला लेना है, फिर भी औदारिक मिश्र के जैसा उसका बताया है, वर्ष पुस्तक का लिया था ना उसने, वैकरिक जैसा होगा। यहाँ औदारिक मिश्र का योग्य उनके समान लिखा, मास पृथक्व लेना पड़ेगा,
मास पृथक,
मास पृथक्व ही लेना, जो छोटा है वो लेना पड़ेगा ना,
मास पृथक्व।
हाँ, तिरेंच देव में जाने वाले और सहयोग केवलियों का अंतर औदारिक मिश्र का योगियों के समान बताया, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से सासाधन समय दृष्टियों का नाना जीवगत जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर से तथा एक जीवगत अंतर के अभाव से असंयत समय दृष्टियों का नाना जीवगत जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर मास पृथक्व से, तो ये औदारिक मिश्र में जरा ओरिजिनल देख लो प्राकृत। वासपुदत्तम ताप्रतो मासपुदत्तम इति पाठा, वास के बदले मासपुदत्तम। देखो पेज नंबर 90 पेज पर 164 नंबर का सूत्र जो है ना, करेक्शन है ना, वो दो नंबर के फुटनोट में नीचे देखो, यहाँ लिखा ना ताप्रतव मास पुदत्तम इति पाठ, इसलिए वहाँ उन्होंने वैकरिक मिश्र में औदारिक मिश्र के समान कहा था, तो हमने वहाँ वो डिफरेंस बताया था। अगर वो मास पुदत्त लेते तो वो सब जगह होता है और यहाँ पर भी घटित हो रहा है। मनुष्यों में आने वाले मास पृथक्त्व में आने वाले, अगर अभी पूर्व कोटि की आयु लेते तो मास पृथक्त्व में कोई सवाल नहीं उसको आने का,
ये तो नाना जी की अपेक्षा है ना अंतर।
तीन वर्ष जब भी कहेंगे, तीन या आठ वर्ष उसके महीने करो ना, तो मास पृथक्त्व तो कह भी सकते उसको भी। हाँ। वर्षों के मास करो ना, 24 से गुणा करो, तो पृथक तो शब्द कहीं पर भी लागू होता है,
एक ही है,
क्योंकि यहाँ औदारिक मिश्र के समान बताया और यहाँ मास पृथक तो कह रहे, देखो ओरिजिनल में भी कह रहे, असंजत समाधिनम नाना जीव गय एय समय मास पुधत्तम अंतरे ही, यह औदारिक मिश्र सूत्र में बताया औदारिक मिश्र के समान और उसके एक्सप्लेनेशन लिखे मास पुदक्त,
पर दोनों में फर्क है ना, वैकरिक मिश्र और औदारिक मिश्र में असह्यत सम्यक दृष्टि का अंतर, ऐसे मास पुदक्त
जैसे हम कहेंगे ना,
पूर्व
कोटि पृथक्त्व में जैसे हम कभी 47 लेते, कभी कितने लेते 48, कभी 96 लेते, कभी श्रीवेदी के लिए उतने 8 ही लेते, तो वैसा पृथक्त्व में अंतर हो सकता है। नहीं, ओरिजिनल में जो लिखा है ना उन्होंने, वहां से बुद्धत्व अंतरिम, हाँ। वो बात वहां होनी चाहिए। इसलिए जो अन्य पाठ में जो है ना, अन्य अन्य प्रतियों में अन्य अन्य पाठ पाया जाता है, तो ये ठीक लगता है। करना नहीं, वहां लिखना। वही तो, क्योंकि अन्य प्रतियों में भी मास लिखा है वहां पर, वास पुदत्त मित्त के बदले मास पुदत्त। यहाँ पर भी तो लिख लिया उन्होंने मास। ये करेक्शन नहीं कहना उसको, उसको वो अन्य प्रति में वो पाया जाता है, कहीं इसमें ये लिखा है उसको हम करेक्शन नहीं करेंगे, परंतु वहां मास हो सकता है क्योंकि एक प्रति में वो पाया गया है। उसको दूसरा पाठ करके हम लिख सकते हैं, उसको काट कर नहीं लिख सकते। यहां तो है ना मास पृथक होते तथा, आगे पढ़े चौथी लाइन, एक जीवगत अंतर का अभाव होने से, चौथे गुणस्थान के अपेक्षा संयोग केवलियों का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य एक समय उत्कृष्ट वर्ष पृथक्व अंतरों से तथा एक जीवगत अंतर का अभाव होने से औदारिक मिश्र योगी और कर्मण का योगी, इन दोनों की समानता पाई जाती है। इस प्रकार योग मार्गणा समाप्त हुई। अब वेदानुवादेन, वेद मार्गणा की अपेक्षा कौन से भेद है? स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुसक वेदी है और अपगत वेदी है। वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में, तो स्त्री वेदियों में गुणस्थान कितने हैं मनीषा बेन, आपको मालूम है? तो आप क्या कहते हैं? एक से दस, नौ। जब तक वेद का उदय होता है पहले भाग में तब तक, तो स्त्री वेद का भी वहां तक है, पुरुष वेद का भी वहां तक है, नपुंसक वेद का भी वहां तक है। ये भाव वेद की बात चल रही है। तो वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जघन्येन अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। अब ये तो आसान है,
बहुत बार देखते हैं,
क्योंकि वो जीव अन्य गुणस्थान में जाकर वापस लौटता है, क्योंकि दृष्ट मार्गे हम वो सारी कंडीशंस लगा लेना, यानी बहुत बार समय को से मिथ्यात्व में गया ऐसा जीव, स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीव के अन्य गुणस्थान को जाकर और शीघ्र लौट कर शीघ्र ही मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर अंतर्मूर्त अंतर पाया जाता है। हमने देखा था ये अंतर बहुत छोटा है, उपलब्धिया पर एक क्षुद्रभाव से भी छोटा काल है ये, पहले बहुत बार आया था। अब उक्कस्य न पणवन्न पलिदोवमानी देशुनानी, स्त्री वेदी मिथ्या दृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पचपन पल्योपम है। देखो मिथ्यात्व का अंतर इन्हें क्या करना, उसको सम्यक्व में रखना पड़ेगा, तो सम्यक्व के साथ स्त्री वेदी, स्त्री वेद में उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, वो पुरुष वेद हो जाएगा, इसलिए एक ही बहु लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतर घटित करने के लिए उसको वापस लाना है मिथ्यात्व। ये हो सकता है कि सम्यक्व के साथ मरकर वो पुरुष वेदी हो जाए, उसकी बात नहीं करनी हमको, अंतर घटित करना है, वापस मिथ्यात्व में लाना है, इसलिए वो देवी का बहु लेना जो मैक्सिमम एक भाव पचपन पल्ले का हो सकता है। तो वहां उत्पन्न हुआ मिथ्यात्व के साथ वो सब लेना पर्याप्त तो हुए, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। अंत में फिर उसको मिथ्यात्व मिलाना है। देखो उपकस से न पनवन बताए ना, श्रीवेदी मिथ्यादृष्टि जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 55 पल्योपम है। जैसे पेज नंबर 95 मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक पुरुष वेदी अथवा नपुसक वेदी जीव 55 पल्योपम की आयु स्थिति वाली देवियों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। वेदक सम्यक्त अर्लीस्ट हो सकता है उसके उपशम सम्यक्त के लिए और थोड़ा काल लगेगा इसलिए, और आयु के अंत में आगामी भव की आयु बांधकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इन्हें सम्यक्त के साथ ही आयु बांधी है उसने और फिर लास्ट में मिथ्यात्व में गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। सम्यक्त के साथ आयु बांधने से सम्यक्त के साथ ही निकला। ओ मिथ्यात्व का अंतर घटित करना था इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, फिर सम्यक्त प्राप्त किया और मनुष्य हुआ।
ये तो हम लोग की स्त्री वेद की बात ना चल रही।
हाँ मैंने मनुष्य आयु बांधी, सम्यक्त के साथ आयु बांधने के कारण सम्यक्त के साथ मरा ऐसा है वो, फिर कहाँ बांधी? आयु पहले सम्यक्त के साथ बांधी थी इसलिए सम्यक्त होकर मरा, ये कहना चाहिए। प्राप्त हुआ तो मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त रहा और मिथ्यात्व में मरा नहीं, इसलिए आगे वाला सम्यक्त का अंतर्मूर्त और बढ़ा दिया। एक्चुअली मिथ्यात्व में क्यों नहीं मरा?
मिथ्यात्व में मरण क्यों नहीं किया वो मेरा?
क्यों नहीं किया? हाँ पर ये जरूरी थोड़ी है,
मिथ्यात्व में भी मरण हो सकता है। अंतर ज्यादा करना तो हमें बोलना पड़ेगा ना। सॉरी
नहीं वैसा ही है, सम्मते न बद्धा हुआ अत्ता दो सम्मते ने वो निगदो, सम्यक के सहित आयु बांधने के कारण सम्यक के साथ ही निकला है।
ये क्या सभी तक एप्लीकेबल होगा?
पहले चौथे में तो होता होगा शायद। अब अभी भेजते समय भी श्रीवेद के साथ भेजने की क्या कंडीशन जरूरत थी?
हम लोग मैं ऐसे समझ रहा था कि कुछ कम 55 पल्ली मीन सीनो मिथ्यात्व में मरण हो गया।
हाँ मुझे ऐसे लगा था। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्त से कम 55 पल्योपम श्रीवेदी मिथ्यादृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। पहले आदेश रूप प्ररूपणा में 6 पृथ्वियों के नारकियों में तथा सौधर्मादि देवों में बद्धाइष्क समय दृष्टि जीव मिथ्यात्व के द्वारा निकाला था। परंतु यहाँ 55 पल्योपम की आयु स्थिति वाली देवियों में उस प्रकार से नहीं निकाला, यहाँ पर इसका कारण जानकर कहना चाहिए।
पेज नंबर 23 पे देखा है हमने, कुछ 327 में लिखा है।
यानी नारकियों में देखो ना, 6 नरक के नारकियों में हमने देखी थी बात। हाँ, परंतु वो तीसरे गुण स्थानों में बात बताई थी। यानी कारण उनको नहीं समझाए, यानी वो कुछ बातें होनी चाहिए, इतना ही देकर छोड़ दिया उन्होंने। ये कहाँ लिखना निकला था हमने?
मैंने पेज 23 और 27 लिखा है, पर उसमें कुछ ज्यादा मिला नहीं।
ये पेज नंबर 28 पर है,
27 पर लिखा है।
ये चार अंतर्मुख से कम अपनी आयु स्थिति प्रमाण बताया था।
चौथे गुण स्थान में तो छह लेशिया हो सकती है, तो द्वितीयत्व में भी मरण हो सकता है ना?
क्या क्या?
चौथे गुण स्थान में लेशिया छह होती है।
लेशिया का कहाँ प्रसंग है? और देवों की लेशिया थोड़ी बदलेगी?
नहीं बदलेगी। हाँ,
यहाँ पहले उन्होंने बताया होगा ना। पहले से छठे से मिथ्या दृष्टि और असंयत का अंतर कितना होता है? कुछ कम उन्होंने बताया, तो कुछ कम में वो चार अंतर्मुख से कम लिया। देखो ना, छह पर्याप्तियों समय निष्पन्न करने में, विश्राम में विशुद्धि को अपूर्ण करने में तीसरा, और आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर चौथा। ये बात पेज नंबर 28 पर आई है। यहाँ पांचवा अंतर्मुख उन्होंने बढ़ाया था। अट्ठाईस पेज पर चार अंतर्मुख लिए थे, 28 पेज पर। ये 28 पर तो हो ही गया, सौधर में ईशान में भी होगा वैसे ही। देवों की भी बात ले लो ना। देखो वहां भी पेज नंबर है 61 पर भी यही बात है, चार अंतर्मुख से कम। यहाँ पांच अंतर्मुख लिए ना, पेज 28 और पेज 28 पर भी चार थे। पेज पर सम्यक्त के साथ निकला के लिए पांचवा नंबर डाला है। पांच अंतर्मुख से कम लिखा है ना, पैराग्राफ के लास्ट में क्या लिखा? नहीं होना नहीं चाहिए वहां पर। यहाँ पर उन्होंने फिर दोबारा सम्यक तो क्यों प्राप्त किया, यही तो उन्होंने प्रश्न पूछा है विशेषार्थ में। नहीं नहीं, मूल में उन्होंने बताया है। ओ, वीरसेन स्वामी ने नहीं मूल नहीं कहा है। नाइन्टी फाइव पेज निकालो,
ये ऊपर लिखा है ना पांचवा अंतर्मुख सम्यक।
95 पेज है ना, तो उसमें प्राकृत निकालो।
ऊपर से चौथी लाइन,
चौथी लाइन में पांचवे पांच अंतर्मुख बताए ना। हाँ। पांच मनुष्य जादो अब ये जो अभी हमने तीन पैराग्राफ का लाइन पढ़ा, लाइन के पैराग्राफ पढ़ा ना, वही ऊपर लिखा है, पंच ही अंतमूर्ते ही उनानी पणवर्ण पलिदो वमानी उक्कस अंतरम होदी, तो होता है। यहाँ कहते हैं छ पुढ़वी नेरी येसु सोहम्मादि देवेशु च सम्मा इट्ठी बद्धा वो पूवम मिच्छत्ते न निस्सारी दो, मैंने पहले तो उसको मिच्छत्व के साथ निकाला था। एत्त पुनः पन्नवन्न पलिदो वमा आउठिदी देवीसु तहा न निस्सारी दो, मैंने वैसे वहां नहीं निकाला मिच्छत्व के साथ। एत्त कारणम जानिय वत्तव्यम, इसका कारण जानकर बताना चाहिए। अभी उन्होंने स्वयं ने उसका कारण बताया,
पर जानकर क्या समझना चाहिए, दैट मींस बाकी तो
यानी उन्होंने ये डिफरेंस बता दिया कि ओरिजिनल सूत्र में क्या बात है, इसमें ये डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, उसके जो कुछ विशेषता है, यानी उन्होंने अपना लक्ष्य वहाँ पेशा है कि वहाँ और यहाँ डिफरेंस है, बस इतनी बात। ये हो सकता है आचार्य के उपदेश से ऐसी बात आई हुई है।
तो क्या सभी जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं कि सम्यक्त्व में आयु बांधी है तो सम्यक्त्व में ही मरण होगा?
हर जगह ऐसा नहीं है, तीसरे गुणस्थान के लिए कंडीशन है। कहीं कहीं ये बात घटित होती है, कहीं पर नहीं भी घटित होगी। हाँ, अब हम निकलते हैं, या उनको ऐसा भी कहना होगा शायद। हो उसको अन्य वेदी में उत्पन्न कराना होगा, अभी फिर जाते समय भी उसको अन्य वेद से क्यों उत्पन्न कराया है? स्त्री वेदी भी तो वहां जा सकता है 55 पल्ले की स्त्री में, क्योंकि वो तो लंबा उत्कृष्ट अंतर तो नहीं देखना था ना हमको, यानी वो लगातार स्त्री वेद में। अन्य जो गुणस्थानों की बात अगर करेंगे, हम स्त्री वेद का लगातार करते तो स्त्री वेदी भी स्त्री वेदी में उत्पन्न होकर 55 पल्ले तक मिथ्यात्व का अंतर कर सकती है ना, वो क्यों नहीं लिया, ये भी मेरा प्रश्न है। वो क्यों कहा? हाँ, 55 पल्ले की आयु में उसको क्यों नहीं उत्पन्न कराया, ये भी प्रश्न है मेरा। नहीं नहीं, बांध नहीं सकता है ना, क्योंकि हम क्या श्री वेदियों में रहने का उत्कृष्ट काल जब कहते हैं तो उसमें हम कितने
पल्ले
पृथक लेते हैं, कितने बार वो देवी होगा, इतने
असंख्यात बार देखा था।
पृथक 100 पल्ले,
100 पल्ले, हाँ, तो हम लोग ने देखा था असंख्यात बार,
100 पल्ले यानी 100 पृथक, यानी 900 पल्ले वगैरह वगैरह, ऐसा यानी अनेक बार हो सकता है ना, यानी श्रीवेदी वहाँ उत्पन्न हो सकता है, श्रीवेदी को क्यों नहीं लिया, ये भी एक प्रश्न है। हाँ, उनके आधार से लिखा, क्योंकि ये प्रश्न तो होता है ना वहाँ पर, जैसे उन्होंने वो प्रश्न उठाया है तो श्रीवेदी को क्यों नहीं उत्पन्न किया, ये हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना, नहीं उत्तर नहीं देंगे हम। स्त्री वेदी भी वहां उत्पन्न होकर समय को तो प्राप्त कर ही सकती है ना। चलो अब यही रुकेंगे।
28 की सत्ता वाला जीव स्त्री वेदी में भी उत्पन्न हो सकता है। 28 की सत्ता वाला जीव स्त्री वेदी में उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जी,
मिथ्या दृष्टि कहीं पर भी जा सकता है ना। अरे 28 की सत्ता वाला एक इंद्रिय में भी हो सकता है।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देश हो।
अश्विन,